તારીખ 15-8-1998 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 43
પ્રકાશ પૃષ્ઠ સંખ્યા 69 શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા 68 પે સળંગ પૂજ્ય ગુરુદેવ સ્થાપક પ્રવચન હોવા હૈ કાર્તિક વિધિ 5મ દિનાંક 23-12-65 શનિવાર કો હુઆ હૈ મને આજ સે 32 સાલ પહેલે એ પ્રવચન હુઆ હૈ પરમાત્મા પ્રકાશ ગ્રંથ ભી આત્મભાવના કા ગ્રંથ હૈ જૈસે કલ हमने ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य देव की भावना के अनुसार बना, वैसे ही परमात्मा प्रकाश ये ग्रंथ भगवान योगिंद्र देवाचार्य का बना हुआ है और वही आचार्य महाराज ने अपनी भावना को आत्मभावना को उसमें भाई है, ऐसा एक ग्रंथ है। तो गाथा का विषय भी ग्रंथ अनुसार है कि जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप अपना निज परमात्मा है, उस परमात्मा की भावना योगिंद्र देव आचार्य किस तरह भाते हैं, ये इस गाथा में प्रकाशित किया गया है। नवी उपजई नवी मरई बंधन मुख परे जीव परमथे जोईया दिनवर एवं भणे। यद्यपि यह आत्मा वस्तु जो द्रव है, शुद्ध परम पारिणामिक भाव रूप वस्तु है, ये गुरुदेव श्री का प्रवचन हम पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण देते रहेंगे। प्रवचन तो स्पष्ट ही है, यद्यपि यह आत्मा जो वस्तु है, एक द्रव्य है, मूल स्वरूप से शुद्ध परम पारिणामिक भाव रूप वस्तु है। ऐसी जो मूल तत्व रूप हमारी वस्तु है, आत्मा है, तो वस्तु न बंधकी करता है, न मोक्ष मार्ग की करता है, न मोक्ष की करता है। क्या कहते हैं कि शुद्ध जो वस्तु आत्मा है, वो तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप होने से अपरिणामी तत्व है। कैसे हैं? परिणामी तत्व है, खुद स्वयं परिणाम रहित है, परिणाम रहित है, परिणाम से शून्य है और परिणाम का अभाव स्वरूप है। इतने स्पष्ट है ये तीनों बात। परम पूज्य जयसेन आचार्य देव ने समय सार की 320वीं गाथा की टीका करते हुए कही है कि हमारे आत्मा कैसी है, पुण्य पाप का तो ज्ञाने करता है ही नहीं, ज्ञाता है, अशुद्ध निशे जीव के परिणाम होने के बावजूद भी ज्ञानी उसका कर्ता हो के परिणमन नहीं करते। बात तो थोड़ी सूक्ष्म है, ज्ञानियों के परिणमन की बात है, गुरुदेव भी कहते हैं कि ये सूक्ष्म बात है। वैसे मूल परम पारिणामिक भाव अपरिणामी आत्मा शुद्ध पर्याय का भी कर्ता नहीं है। गुरुदेव मुख्यतया ज्ञान दशा के और कर्ता कर्म के मुख्यता वाले जो समय सार के मुख्य शैली है, वही शैली से प्रवचन देते थे। तो यहाँ आत्मभावना का विषय जो परम पारिणामिक भाव है, उसके लिए भी ऐसा ही कह रहे हैं कि ये वस्तु बंध की कर्ता नहीं है, मोक्ष मार्ग की कर्ता नहीं है और मोक्ष की कर्ता भी नहीं है। यह बात सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म है कि प्रमाण से परिणामों का कर्ता आत्मा होता है, फिर भी वो परिणामों का कर्ता नहीं भी है। कर्ता भी है और कर्ता नहीं भी है, तो नहीं है वो बात ज्यादा सूक्ष्म है। परिणाम का कर्ता है वो बात तो समझ सब सामान्य जीव को भी अनुभव में आती है कि मैंने राग किया, मैंने जाना, मैंने समझा, ये सब परिणाम राग के और ज्ञान के परिणाम अपने में होते हैं, अनुभव करते हुए सब कह सकते हैं। लेकिन शुद्ध नहीं के बल से और शुद्ध सम्यक दृष्टि के बल से अपने परम पारिणामिक भाव में अस्तित्व को ग्रहण करके, क्या दृष्टि से भी, शुद्ध नहीं से भी और सम्यक पुरुषार्थ से भी स्वरूप में अस्तित्व ग्रहण करके ज्ञानी कहते हैं कि मेरी आत्मा अशुद्ध पर्याय का कर्ता तो दूर रहो, पर पदार्थों के जगत के कार्य का कर्तापना तो बहुत दूर रहो, लेकिन ज्ञानादि मोक्ष आदि शुद्ध पर्याय का कर्ता भी मैं नहीं। ऐसा अपना स्वरूप की भावना यहां भाते हैं। वस्तु जो द्रव्य है सामान, वो ध्रुव वस्तु है। ध्रुव माने क्या, कि वैसी की वैसी हमेशा हमेशा रहना, चाहे आत्मा निगोद में अनंत काल हो, और सब आत्मा जो परिभ्रमण करने वाले हैं और नहीं परिभ्रमण करने वाले हैं, सभी का अनंत काल तो निगोद में गया ही है। जितने भी सिद्ध हुए इनका भी अनंत काल निगोद में गया है और हम लोगों का भी गया है, क्योंकि त्रस्पर्य का काल सीमित है, जबकि निगोद का काल सीमित नहीं है, अनंत है। चाहे आत्मा निगोद में अनंत काल रहा हो, चाहे सिद्ध अवस्था में अनंत काल रहेगा या रहा हो, मूल वस्तु जो ध्रुव है उसमें कोई फर्क नहीं है। मूल जो ध्रुव तत्व है उसमें कोई हानि वृद्धि नहीं होती, कोई फेरफार नहीं होता, विकृति तो नहीं होती, लेकिन वो अबद्ध घट है, बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, अबद्ध घट है और वैसा का वैसा रहना, यही अपना स्वरूप है। उसको कहते हैं ध्रुव, उसको क्या कहते हैं,
ध्रुव,
जो हमेशा हमेशा अपने स्वरूप से अविचलित रहता है, अविकृत रहता है और परिणाम नहीं करते हुए अपरिणामी रहता है। जो संसार के भाव को नहीं करती है, अपनी आत्मा संसार के परिणाम को नहीं करती है, मोक्ष मार्ग को भी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी नहीं करती है, और मोक्ष को, परमानंद को, केवल ज्ञान को, यथाख्यात चारित्र को नहीं करती है। ये वस्तु का स्वरूप है जो भावना में भाने योग्य है, जो दृष्टि में लेने योग्य है, जो उपयोग में लेने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, जो चारित्र से स्थिर होने योग्य है, ऐसा अपना स्वरूप है। सिर्फ ये केवल बातों का विषय नहीं है, केवल विकल्प का भी विषय नहीं है, केवल चिंतन मनन और रटन का विषय भी नहीं है, किंतु जैसे कल नियम सार के गाथा में हमने पढ़ा कि किसी एक नय के बल से, एक नय से नहीं कहा, एक नय के बल से, मैंने शुद्ध नय के बल से, माने शुद्ध नय का पुरुषार्थ पूर्वक हमें ये भावना पानी है। अगर हमें इस प्रकार के पुरुषार्थ रहित मात्र विकल्प विचार चिंतन मनन रतन करेंगे तो हमको ये भावना सही रूप से हमने नहीं भाई, गलत रूप से भाई, उतना ध्यान रखने की बात है। इसलिए भावना में वो बात टीकाकार महाराज ने कह दी कि ये किसी एक शुद्ध नय के बल से ये बात हम कह रहे हैं, आपको भी ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा नय प्रकट करके ये भावना बनी है। तब प्रश्न ये हो सकता है, आप उठा ही नहीं रहे हैं, उठाने की कोई पाबंदी नहीं है इधर, लेकिन उठाना चाहिए, मैं उठाता हूं कि ये जो नय है वो तो ज्ञानी को होते हैं, चतुर्थ गुण स्थान से और आगे जाकर के ही होते हैं, मोक्ष मार्गी को ही होते हैं, और हम रहे मुमुक्ष, हमारे पास तो वो नय भी नहीं और ये पुरुषार्थ भी नहीं, फिर हमारी भूमिका में हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न यहाँ जिसकी दृष्टि प्रयोजन पर है उसको उठना चाहिए। क्या हम भावना नहीं भा सकते? तो भावना भा सकते हैं रुचि पूर्वक। कैसे? रुचि पूर्वक भावना भा सकते हैं, पाबंदी नहीं है भावना भाने के। ऐसा कभी ज्ञानियों ने नहीं कहा, आचार्यों ने नहीं कहा कि मुमुक्ष आत्म भावना नहीं भा सकता है, उनके लिए पाबंदी है, वो अवश्य भावना भा सकता है, लेकिन रुचि से। रुचि माने क्या? कि अगर हमें जरूरत लगी है तो उस जरूरत में से पैदा हुई जो रुचि, और वो रुचि और वो जरूरत भी ऐसी कि जिसके बिना हमें चले नहीं, वैसी उसको कहते हैं रुचि। उस रुचि में जो आत्मभावना ज्ञानी और श्री गुरु शुद्ध नय के बल से पुरुषार्थ से भा रहे हैं, हमें भी रस और रुचि पैदा कर देंगे। अगर हमारी रुचि हो तो हमारी रुचि को पुष्टि मिलेगी, पोषण मिलेगा और हमारी रुचि और बढ़ेगी। इन रुचि बढ़ाने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए ये भावना की गाथाओं का और ग्रंथों का, आगमों का स्वाध्याय करना उचित है। ये इसका अपनी भूमिका में स्थान है। अन्यथा प्रकार से न उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, न उसका विचार करना चाहिए, न चिंतन होना चाहिए। क्यों कि अगर वैसा होगा तो जो नए के बल से है वो बात खत्म हो जाएगी। मतलब नए तो है ही, हम वैसे ही अपने आप को प्रकट अवस्था में मानने लग जाएंगे कि मैं तो वैसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। तो ऐसा कहीं विकृति नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। और यही कारण से किसी एक नए के बल से ऐसा है ऐसा कहा गया है। वो बात हर जगह हमें ख्याल में लक्ष्य में रखने लायक है। क्यों कि हमारे पास नए ज्ञान और पुरुषार्थ नहीं है, इसी कारण से। अगर हमारी अवस्था में नए ज्ञान और पुरुषार्थ होता तो ये बात सहज रूप से हमारे परिणमन में समाविष्ट होती और विकृति होने की संभावना नहीं होती। वरना विकृति होने की संभावना है तो वहाँ लाल बत्ती रेड लाइट रखी गई है कि किसी एक नए के बल से हम बात कह रहे हैं। आपको भी भावना कुछ इस प्रकार की रुचि और पुरुषार्थ के समेत करनी है, वरना रुखी सुखी भावना तो आपको कहीं और जगह ले जाएगी और नुकसान हो जाएगा। ऐसी भावना के वक्त परिणाम में विकल्प होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की विशेषताएं जो परम तत्व की है, ध्रुव तत्व की है, परम परिणामी के भाव की है, उस भेद को भेदों के साथ तो विकल्प भी चलता है। फिर भी ये विकल्प वाली, केवल विकल्प वाली भावना नहीं है, वो ध्यान में रखने योग्य है। केवल विकल्प है, वहां मात्र राग है, और भावना है वहां रस है, रुचि है, कुछ अंश में उस दिशा का पुरुषार्थ है, और फिर ये भावना चलती है, तो ये यथार्थ है। वरना राग और भावना का अंतर मालूम नहीं है तो हमें ये ख्याल में रखना है कि हमको उनको केवल विकल्प में नहीं जाना है। हमारा रस, हमारी रुचि और हमारा पुरुषार्थ कुछ अंश में चलना चाहिए, और जैसे जैसे हम भावना में आगे बढ़ते रहे, हमारा रस, रुचि और पुरुषार्थ बढ़ता बढ़ता मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाए, यही हमारा फल, हमारे पुरुषार्थ का यही फल आना चाहिए। तो यहां भी तो वस्तु जो ध्रुव है वो परिणाम को नहीं करती है, वो बात हमारा रुचि का विषय बनना चाहिए, हमारी भावना का विषय बनना चाहिए।
हाँ,
बल माने पुरुषार्थ। ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों साथ चले तब तो कोई कार्य निष्पन्न होता है। अकेला विचार बिना पुरुषार्थ वाला कामयाब नहीं होता। इसलिए कि कहीं लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं और विकल्प ही विकल्प करते रहते हैं, पुरुषार्थ साथ में होता नहीं, यानी पुरुषार्थ की दिशा बदलती नहीं, पुरुषार्थ की दिशा उल्टी रहती है और विकल्प चलता रहता है आत्मा का, तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। ये बात का यहाँ हमें ख्याल रखना है। आगे कहते हैं गुरुदेव श्री, कि आत्मा अखंड आनंद ध्रुव तत्व वस्तु है। कैसा है आत्मा? कि अखंड आनंद ध्रुव वस्तु। गुरुदेव थे, जब अपने स्वरूप के भावना में ऐसे महान आचार्यों के भावना का ग्रंथ का प्रवचन करते थे, सिर्फ सुनाते नहीं थे, बहुत भाव विभोर हो जाते थे। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। गुरुदेव को हमने करीब 23-24 साल तक सुने हैं। भाग्य योग से, सौभाग्य से हमारा रहना सोनगढ़ से नजदीक रहा। सिर्फ 32 किलोमीटर है। कितना? 18 मील। भावनगर से सोनगढ़ तो हम बार बार 23-24 साल तक जाते रहे और गुरुदेव को, गुरुदेव का सत्संग का समागम का बहुत लाभ लेते थे। प्रत्यक्ष योग में गुरुदेव को आत्मभाव में विभोर हुए देखते थे, सिर्फ सुनते नहीं थे, देखते थे। और जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो जिस रस में वो झूमते थे उसी रस के असर आए बिना नहीं रहते। प्रत्यक्ष योग का यही फायदा है। आज वही शब्द है गुरुदेव के कि आत्मा अखंडानंद ध्रुव वस्तु। शब्द तो वो केवल है, लेकिन प्रत्यक्ष योग में यही शब्द सुनने में उनके भाव विभोर चित्र को आज भी हम नजर आते हैं, विजुलाइज करते हैं कि कैसे वो भाव विभोर होकर के बोलते थे। इसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, न्याय देने की जरूरत नहीं पड़ती, युक्ति बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्रत्यक्ष ही है तब इस प्रत्यक्ष का जो असर आता है वो असर कभी परोक्ष का नहीं आता। क्यों? कि उसकी कोई अवेजी नहीं, प्रत्यक्ष की कोई अवेजी नहीं होती, कोई ऑल्टरनेटिव इसका नहीं बैठता। ऐसा आत्मा, आत्मा अखंडानंद ध्रुव तत्व वस्तु, ऐसा आत्मा जन्मों मरण बंध मोक्ष आदि अवस्था को नहीं करता है। कोई अवस्था को नहीं करता। जन्म मरण बंध मोक्ष सब आगे, कोई चीज बाकी, कोई प्रकार की अवस्था उसमें बाकी नहीं रही, उसको नहीं करता है। ये प्रवचन गुरुदेव की टेप पर से लिखा गया है, हूबहू। बोलने में और लिखने में थोड़ा फर्क होता है, उतना ही कहीं फर्क हुआ है। करीब कभी करीब तो हूबहू रखने की ही कोशिश की गई है। उन जमाने में तो लिखने में बहुत टाइम लगता था, स्कूल पर से लिखते थे, स्कूल आते ना उसको रिवाइंड करते, फिर लिखते, फिर रिवाइंड करते, फिर लिखते, ऐसे ऐसे एक घंटे का प्रवचन लिखने में शुरू में तो 8 घंटा लगता था, फिर 5 घंटा, तो थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद 5 घंटे में लिख लेते थे। तो कहते हैं कि वर्तमान पर्याय में वस्तु शुद्ध द्रव्य है, ऐसी शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने से शुभ अशुभ उपयोग को करता हुआ जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है। क्या कहते हैं कि ऐसी जो वस्तु आत्मा है तो शुद्ध वस्तु उसकी शुद्धात्मानुभूति का वर्तमान पर्याय में जिसको अभाव है, अनुभव नहीं हुआ हो, वो आत्मा शुभाशुभ उपयोग को करता हुआ जन्म मरण भी करता है और शुभ शुभ कर्म बंध को भी करता है। दूसरा प्रश्न से बात करते हैं, व्यवहार नैश है यानी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नैश है यानी पर्यायार्थिक नैश है, ये बात चली है कि वर्तमान पर्याय में वस्तु जो द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, ऐसा मैं शुद्ध द्रव्य हूं ऐसे शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने से शुभ और अशुभ उपयोग में सावधान होता है, जीवन मरण को करता है और शुभाशुभ कर्म बंध को भी वो करता है और वैसे ही परिभ्रमण चलता है। मूल वस्तु तो पर्याय रहित ध्रुव है, जबकि मूल वस्तु तो पर्याय रहित, पर्याय का अभाव स्वभाव रूप, पर्याय से शून्य है और इससे रहित है। वस्तु जो है तो भावना तो इसकी चलती है ना, वो तो ज्ञान का विषय हो गया, पर्याय में क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। जब इस वस्तु का अनुभव नहीं है तो कर्तापना आए बिना रहेगा नहीं और उसके फल स्वरूप जीवन मरण हुए बिना रहेगा नहीं। एक ही काल में दोनों बातें, वस्तु शुद्ध भी है इसलिए भाव रहित भी है और अनंत काल से जन्म मरण और अनंत भाव हुआ है, वो भी उसी का ही हुआ है, दोनों बात एक साथ है। अनंत जन्म मरण करने वाले की मूल वस्तु तो भाव रहित ही है, लेकिन इसका स्वानुभव और भान नहीं होने से मेरा जन्म मरण है ऐसा अनुभव होता है और भान होने से जन्म मरण मेरा नहीं है ऐसा अनुभव होता है। जो मूल वस्तु का अनुभव है वही सही अनुभव है, वही सम्यक अनुभव है, बाकी का अनुभव मिथ्या अनुभव है। क्या है? मिथ्या अनुभव है, क्योंकि मूल वस्तु ऐसी नहीं है। इसलिए वस्तु जो है निश्चय तत्व, वस्तु जो है निश्चय तत्व, सो निश्चय का विषय है तो निश्चय नय का विषय है। सर्वथा अगर ऐसा होता तो व्यवहार नय का विषय होता ही नहीं, जबकि व्यवहार में भी सम्यक ज्ञान का अंश है जैसा निश्चय नहीं भी सम्यक ज्ञान का अंश है। दोनों सम्यक ज्ञान और प्रमाण ज्ञान में दोनों बात युगपद रूप से अनुभव गोचर होती है। उपचार कहा है, ठीक है, लेकिन उपचार करने योग्य होता है वहाँ ही उपचार होता है। उपचार का मतलब क्या हुआ कि उपचार योग्य है तो उपचार किया या उपचार के अयोग्य है वहाँ उपचार किया, तो उतना हमें ख्याल में रखना है। क्या उतना अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रमाण ज्ञान रहेगा नहीं और ज्ञान प्रमाण नहीं रहेगा तो निश्चय नहीं भी रहने वाला नहीं है। इसलिए नरक की प्रवृत्ति बिना प्रमाण होती नहीं। हमारे यहाँ विद्वानों में आजकल भी एक विवादास्पद विषय चल रहा है, उस विवाद को हम ध्यान में नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए बात को कहते हैं। विवाद को छेड़ने का मेरा अभिप्राय नहीं है। हम वहाँ सोनगढ़ में स्वाध्याय करते थे तो हमारे सामने वो प्रश्न आता था, क्योंकि इसका विवाद चलता था कि स्वानुभूति प्रमाण ज्ञान में होती है या नय ज्ञान में होती है। क्या क्या प्रश्न आता था? स्वानुभूति एक ज्ञान की पर्याय है, ये नय ज्ञान की है या प्रमाण ज्ञान की है, ये प्रश्न आता था। विवाद में तो वही बात है कि कुछ एक लोग उसको केवल प्रमाण ज्ञान कहते हैं, कुछ एक लोग उसको केवल नय ज्ञान की पर्याय कहते हैं। करने का है उसी को हम शुद्ध नहीं कहते हैं, ये शुद्ध नहीं का स्वरूप है। और जब नई प्रवर्तित होता है तो बिना प्रमाण और नई की प्रवृत्ति किसी भी ज्ञानी को हुई सकती? प्रमाण की अनुपस्थिति सम्यक ज्ञान के किसी भी समय में नहीं होती, चाहे उपयोग निश्चय नहीं का हो चाहे उपयोग व्यवहार नहीं का हो। प्रमाण ज्ञान तो दोनों वक्त मौजूद ही होता है। तो उत्तर देते थे, प्रश्न आता था हमारे सामने स्वाध्याय के दौरान ही आता था कि आप बताइए, और प्रश्न में अपेक्षा वो है कि या तो आप प्रमाण बोलो या तो आप नहीं कहो, दोनों में से एक आपको बोलना चाहिए, और दो पक्ष है, आप किसका पक्ष करते हो बताइए। लेकिन ये पक्ष विपक्ष में जाने की चीज है ये। इस शुद्धात्मानुभूति शुद्ध नयात्मिका भी है, तो 13 या 14 कलश में शुद्ध नयात्मिका कही है समय साथ। हाँ, प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं है, निश्चय नहीं पूज्य है, और प्रमाण ज्ञान अपूज्य भी नहीं है, क्योंकि सर्वथा अपूज्य नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान भी एक प्रमाण ज्ञान ही है जिसमें नय की प्रवृत्ति नहीं है। केवल ज्ञान अप्रमाणिक नहीं है, श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, सम्यक श्रुत ज्ञान भी सम्यक प्रमाण है। तो नये चक्र में उस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य माइल धवल करके आचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि प्रमाण पूज्य अपूज्य है। क्या बोले? न केवल पूज्य भी है न केवल अपूज्य भी है। अगर केवल अपूज्य होता तो केवल ज्ञान भी अपूज्य हो जाता और स्वानुभव भी अपूज्य हो जाता, क्योंकि स्वानुभव प्रमाण ज्ञान में ही होता है, नयात्मिक होने पर भी प्रमाण ज्ञान में होता है। क्यों? कि वहां द्रव्य पर्याय का युगपत अभेद अनुभव है। स्वानुभव में क्या है? द्रव्य पर्याय का युगपत अभेद अनुभव को प्रमाण कहते हैं, और वही स्वानुभूति का स्वरूप है। तो वो स्वानुभव भी अपूज्य हो जाता है और केवल ज्ञान भी अपूज्य हो जाता है, लेकिन उसमें व्यवहार नहीं का समावेश होने से, व्यवहार नहीं पूज्य नहीं होने से, यानी उपाधि नहीं होने से उनको अपूज्य कहा है, और निश्चय का उसमें समावेश होने से उसको पूज्य कहा है, और दोनों की अपेक्षा साथ में लेकर के पूज्य अपूज्य भी कहा है। ये सब बात उसमें है, न केवल किसी का भी एकांत हम करेंगे तो हमारी मुमुक्षु की भूमिका में नुकसान होने की संभावना है। वजन अवश्य देना है, वजन व्यवहार पे नहीं देना है, वजन निश्चय स्वरूप वस्तु पर ही देना है। फिर भी बैलेंस रख करके, क्या
बैलेंस रख करके,
अगर हमारा संतुलन नहीं रहा तो हम निश्चयाभास में आ जाएंगे। प्रमाण ज्ञान वाले ज्ञानी को सहज संतुलन बना रहता है, वो इतना जोर देते हैं, उतना जोर देते हैं निश्चय पे कि केवल ज्ञान भी परब्रह्म है। नियमसार की 50वीं गाथा, शिक्षाई पर्याय भी परद्रव्यम परभावम हेयम इति, स्वरूप की भावना भाते भाते उस भावना में उसने आ जाते हैं कि पर्याय की भावना भाते नहीं, केवल ज्ञान की भी भावना भाते नहीं। अगर भाते हैं तो भी उनका तो संतुलन बना रहता है, पूर्व अवसर में श्रीमद जी का बना रहा है, उनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उन लोगों को है कि जिन्होंने अभी ज्ञान की प्रमाणता प्रमाणिक रूप से ग्रहण नहीं की हो, उनको विशेष सावधान रहना है। ना हमको निश्चयाभास में आना है, ना हमको व्यवहाराभास में आना है, ना हमको उभयाभास में भी आना है, प्रमाणाभास में भी आना नहीं है। और फिर कहाँ जगह है रहने की, रहने की जगह है सम्यक पुरुषार्थ में और यथार्थ परिणमन में रहने की जगह है। बाकी तीनों जगह हमारे लिए रहने की जगह नहीं है। ना हमें निश्चयाभास में जाना है, ना हमें व्यवहाराभास में जाना है, ना हमें प्रमाणाभास में भी जाना है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। क्यों? कि हम तो बैलेंस रख करके चलेंगे, केवल ज्ञान को भी परद्रव्य कहने में हमारा संतुलन हम खोने वाले नहीं हैं। लेकिन आप सुनने वाले को थोड़ा सावधान रहना है कि कहीं अपना संतुलन खो करके हमारा वजन जाएगा तो हम आभास में चले जाएंगे। और ऐसा नहीं होने के लिए चारों बाजू से सभी पड़ोसों से प्रवचन में स्पष्टीकरण दिया जाता है। आगे कहते हैं कि वस्तु जो है निश्चय तत्व, सो निश्चय का विषय है, और उसकी जो पर्याय है तो व्यवहार तत्व व्यवहार में का विषय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग व्यवहार में का विषय है, सम्यक दर्शन व्यवहार में का विषय है, सम्यक ज्ञान व्यवहार में का विषय है, सम्यक चारित्र व्यवहार में का विषय है, सम्यक पुरुषार्थ व्यवहार नहीं का विषय है। देखो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, पर्यायार्थिक नहीं का विषय। लेकिन परम पारिणामिक भाव ध्रुव वस्तु है वो निश्चय नहीं का विषय है, वो निश्चय वस्तु है, वो खरी आत्मा है, सच्ची आत्मा है। ऐसे आत्मा का व्यवहार तत्व है तो पर्याय है, व्यवहार तत्व है तो पर्याय है। प्रमाण ज्ञान में दोनों का युगपत अनुभव होता है। इसी ग्रंथ में सुगानी जी के 50वें पत्र है, देव दृष्टि प्रकाश का पहला भाग। बहुत से पत्र में एक साथ दोनों का अनुभव होता है, वो बात बार बार वो लिखते हैं, द्रव्य और पर्याय एक साथ दोनों का अनुभव होता है, वो बातों बार बार पत्र में लिखते हैं। फिर भी दृष्टि के विषय में वो इतने जबरदस्त बात करते थे, कैसी जबरदस्त बात शायद लोगों ने सुनी नहीं हो, ऐसी बात करते थे। पर कुछ लोग भड़क जाते हैं, ऐसी भी बात करते थे वो। फिर भी अनुभव का विषय जब चलता था, ये पद दोनों का अनुभव होता है, वो बात भी वो बार बार करते थे। कहने का मतलब यही है कि मोक्ष की भूमिका में दृष्टि साधन नहीं है, ज्ञान साधन है। क्योंकि दृष्टि तो एक का स्वीकार करती है, ज्ञान दोनों का स्वीकार करता है, मिथ्यात्व अवस्था में भी और सम्यक अवस्था में भी। मिथ्यात्व अवस्था में दृष्टि अपने स्वरूप छोड़ करके परतत्व का अपना रूप स्वीकार कर लेती है, अपना स्वरूप मौजूद होने के बावजूद भी। सम्यक अवस्था में दृष्टि केवल ध्रुव तत्व का ही स्वीकार करती है, चाहे केवल ज्ञान की उपस्थिति हो तो भी उसका स्वीकार नहीं करती। इसका परिणमन करने का ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए जबकि ज्ञान सम्यक अवस्था में यथार्थ रूप से दोनों का स्वीकार करते हैं और अनुभव करता है, ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में आपस में विरोध होता नहीं। और जो यह बात यथार्थ रूप से समझते हैं या अनुभव करते हैं, उनको कोई विरोधाभास मालूम पड़ता नहीं। वरना क्या होता कि जो एक नए का पक्ष करते हैं, एक नए के विषय का पक्ष करते हैं, उनको अपनी बात शास्त्र में मिलती है और दूसरे नए का पक्ष करने वाले को अपनी बात शास्त्र में मिलती है, और पक्ष करने वाले को ऐसा लगता है कि देखो मेरी बात आई कि नहीं आई, देखो मेरी बात आई कि नहीं आई, दोनों की आती है। हमने भी पूर्व काल में ऐसा ही समोसरण में किया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जब हमारे पक्ष की बात आई तो हम राजी राजी हो गए, जब दूसरी बात आई तो हमको अच्छी नहीं लगी, भगवान की वाणी भी अच्छी नहीं लगी। ये हमारी करुणाजनक स्थिति रही, ये हमारी करुणाजनक स्थिति रही, इसलिए हम यथार्थ परिणमन में आ सके नहीं। पर्च आया है, मैं पढ़ता हूं। जिज्ञासा है कि निश्चय नए व्यवहार में बैलेंस कैसे होगा, होना चाहिए, थोड़ा और विस्तार से बतलाइए। ठीक है, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, संक्षेप में ले लूंगा, बाकी प्रश्न चर्चा शाम को चलेगी तो थोड़ा और विस्तार कर लेंगे। बैलेंस रखने में मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञानी सहज बैलेंस रहता ही है, ज्ञानी की भूमिका में तो सहज ही बैलेंस रहता है, तो वहां कोई सीखने की चीज नहीं है, वो सहज दशाएं ऐसी है। परंतु ये सावधानी मुमुक्षु के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रयोजन भूत तो प्रश्न है कि हमें जो हमारी समझ है, हम समझ की भूमिका में खड़े हैं, यथार्थ होनी चाहिए। यथार्थ शब्द तो एक तीन अक्षर का है, लेकिन इसका विषय इसका ग्राउंड बहुत विशाल है, चाहे तो इस पर एक पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, इतना विशाल ग्राउंड है। लेकिन यहाँ इतना समय हमारे पास नहीं है। इसकी मुख्य बात कि मुमुक्षु को यथार्थता कैसे रहे सहज रूप से, ज्ञानी को सहज रूप से रहती है, और हम बात बात में सावधानी कैसे रख सकते हैं, और असावधानी होती है हमारी, बेसावधानी होती तो नुकसान हो जाता है, तो हमें सहज रूप से सावधानी रहे ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यवस्था अवश्य अवश्य है, और इसके एक मास्टर की है। क्या है? इसकी भी एक मास्टर की है, जैसे ज्ञान दशा में प्रमाण ज्ञान इसकी मास्टर की है, वैसे मुमुक्षु की भूमिका में भी इसकी एक मास्टर की है। और वो है कि मुमुक्षु को जो कुछ भी करना है केवल अपने आत्म कल्याण को पकड़ करके, इसकी पकड़ करके जो कुछ करना है वो करना है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं करना। अगर इतनी सी संक्षेप वाली बात हमारे लक्ष्य से हटी नहीं तब तो यथार्थता रहेगी। अगर हमारा लक्ष्य हट गया तो प्रवृत्ति रह जाएगी, तत्व ज्ञान की हो, पूजा भक्ति की हो, कुछ भी हो, धार्मिक साधन कुछ भी हो, यथार्थता नहीं रहेगी। चाहे हम निश्चयनी का विषय को हाथ में लें, चाहे व्यवहारनी का विषय को समझने के लिए सामने रखें, चाहे प्रमाण का विषय सामने रखें, अगर ये मास्टर की हाथ में नहीं रही तो तीनों में भी आभास होने वाला है ही। इसलिए हमें कहीं भी चूक नहीं हो, गलती नहीं हो, और हमारा आत्म कल्याण बनता रहे और हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, इसी कारण से हमें यथार्थता होनी जरूरी है। और ये यथार्थता के कारण सहज बैलेंस रहेगा, वरना बैलेंस रहना बहुत बहुत कठिन है। अनंत काल में हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो बात नहीं है, हमारा आगम बोलता है कि अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व तक हम पढ़ चुके, लेकिन ऐसा परलक्षी ज्ञान असफल रहा, निष्फल रहा। क्या कारण से? यथार्थता के कारण से। अब ये विषय थोड़ा सूक्ष्म इसलिए है कि ऐसे समझ ऊपर ऊपर से तो सही दिखती है, शास्त्र के अनुकूल दिखती है, समझ में कोई भूल नहीं है, भूल बैलेंस रखने में है। दोनों बात समझ में आती, 11 9 पूर्व में कोई एक बात समझ में आई ऐसी बात नहीं है, और हमको भी एक बात समझ में आ रही है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन में और भगवान की वाणी में दोनों ने की बात चली है, और हमको भी समझ में आती है कि उत्पाद भी ध्रुव युक्तम सत, वो सत को भी जानते हैं और त्रिकाल सत को भी हम समझते हैं। हम कोई उत्पाद भी ध्रुव युक्तम सत को झूठा नहीं कहते, क्योंकि ये भी उमा स्वामी महाराज का एक अकाट्य सूत्र है। अकाट्य सूत्र इसलिए कहते हैं कि श्वेतांबरों ने भी इसका स्वीकार किया, ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, उसका स्वीकार श्वेतांबरों ने किया है। वो कहते हैं कि हमारे आचार्य थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। हम कहते हैं कि हमारे दिगंबर आचार्य थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। वो तो विवाद का विषय हो गया, लेकिन इसलिए वो हमारे हमारे बात चलती है कि हमारे महाराज हैं, हमारे महाराज हैं। क्यों? कि इनकी बात कोई काट सकते नहीं, एक एक सूत्र ऐसे हैं कि इसकी बात कोई काट सकते नहीं है। जब दोनों सत्य है और दोनों स्वीकार करने योग्य है, सत्य अस्वीकार करने योग्य होता ही नहीं, तब बात उतनी सी रहती है कि यथार्थ रूप से स्वीकार करो करो, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। त्रिकाल शब्द जो अपरिणामी ध्रुव परम पारिणामिक भाव है, परम तत्व निज परमात्मा जिसकी भावना यहाँ भाई जाती है, वो भी परम सत है, सत है नहीं, वो परम सत है, और उत्पाद भी ध्रुव युक्तम सत है, वो तो उसमें बात का निषेध तो कर सकते हैं नहीं है। जब दोनों बात है तो दोनों का यथार्थ रूप से स्वीकार किया जाए, यही हमारी कार्य पद्धति होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान में तो सारा जगत सम्यक ज्ञान का ही विषय बनता है, यानी सारा जगत क्या चीज है कि सम्यक ज्ञान का ध्येय है। कहीं भी सम्यक ज्ञान को आपत्ति नहीं, अड़चन नहीं है, क्यों कि कोई भी चीज सामने आती है ज्ञान में, ध्येय रूप होती है, उनको सम्यक प्रकार से वो ग्रहण करके अपना हित साधता साधता पूर्ण हो जाता है केवल ज्ञान तक, इसलिए उनको तो कोई आपत्ति है ही नहीं। यही हमारी कार्य पद्धति शुरू से होनी चाहिए। अगर हमारी ये कार्य पद्धति नहीं रही तो हम तीन में से किसी आवास में आ ही जाएंगे, और हमारे जो प्रयोजनभूत कार्य है उससे विरुद्ध जाएंगे और हमें अपने आप को नुकसान करेंगे। तो ये बात रही संक्षेप में इस प्रश्न की। क्या कहते हैं कि वस्तु जो है निश्चय तत्व है, सो निश्चय का विषय है, और उसकी जो पर्याय है वो व्यवहार नहीं का विषय है, जो व्यवहार तत्व है, और आत्मा का निश्चय तत्व है वो एक रूप ध्रुव 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 है। यहाँ तो इसकी भावना का विषय चलता है, इसलिए भावना तो बार बार भाई जाती है, और जिसको रस आता है वो तो बार बार भाएंगे ही, इसलिए वो बात गुरुदेव के प्रवचन में ध्रुव की बात इस प्रवचन में बार बार विशेष रूप से आएगी। वो की वो बात है ऐसा नहीं समझ करके नया नया रस अपूर्व अपूर्व रस लेने योग्य बात है, ऐसा हमारा स्वाध्याय का प्रकार होना चाहिए। तो प्रवचन का शेष अंश है आगे के स्वाध्याय में लेंगे, अभी समय समाप्त हो रहा है, यहाँ तक कहते हैं।